ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है और यह अगले 5 साल की तस्वीर दिखाएगा। उन्होंने कहा कि देश 8% विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से नकारात्मक राजनीति से बचने की अपील की। उन्होंने सत्र के सकारात्मक और सृजनात्मक होने की कामना की।
मैं आज आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, देश को प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा हमें आगे बढ़ाना होगा।
दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद की सुचारू कार्यवाही सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने कथित नीट पेपर लीक मामले, रेलवे सुरक्षा, अग्निवीर योजना, केन्द्र राज्य संबंध तथा मणिपुर और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर सदन में चर्चा की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी। भारत ने विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था का दर्जा बनाए रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यह प्रतिबंध लागू किया था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़ने पर लगी पाबंदी पहले ही हटा दी है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अब तक 4,500 से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ढाका में भारतीय उच्चायुक्त सीमा चौकी तक भारतीय नागरिकों की सुरक्षित यात्रा का प्रबंध कर रहा है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्राधिकरणों, बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शेष विद्यार्थियों और भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क में है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। श्री बाइडेन ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की। श्री बाइडेन ने कहा कि वे जल्द ही अपने इस निर्णय के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया और असाधारण सहयोगी के रूप के साथ काटने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए 8,50,00,000 रूपये देने की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय दल में 70 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेल इस महीने के 26 तारीख से शुरू होंगे। हरियाणा सरकार ने आज ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए नूह जिले से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। पूरे क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई बल, हरियाणा पुलिस और होमगार्ड के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। श्रीलंका में खेले जा रहे एशिया कप 2020 महिला क्रिकेट में कल भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ सेमीफाइनल में भारत की जगह पक्की हो गई है। अंक तालिका में ग्रुप ए में भारत शीर्ष पर है। कल भारत का सामना नेपाल से होगा। आज ग्रुप बी में श्रीलंका का मुकाबला मलेशिया से होना है। मैच दिन के 2 बजे से खेला जाएगा। ग्रुप बी में ही आज शाम 7 बजे बांग्लादेश का मुकाबला थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।